ॐ भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम छठा स्कंद पांच सातवां अध्याय इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान श्लोक संख्या 15। अथाहम अमराचार्यम अगाधधिषणम द्विजम प्रसादयिष्ये निषठः शीर्ष्णतच्चरणं स्पृशन्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। राजा इंद्र ने कहा, अतः अब मैं अत्यंत निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान से पूर्णतया अवगत हैं और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से नमस्कार करूंगा। तात्पर्य, चेत होने पर राजा इंद्र की समझ में आया कि वह अपने गुरु बृहस्पति का निष्ठावान शिष्य नहीं है। अतः उसने निश्चय किया कि अब वह निषठ अर्थात निष्कपट बनेगा। निषठः शीर्षणा तच्चरणं स्पृशन्। उसने अपने गुरु के चरणों को शिर से स्पर्श करने का निश्चय किया। इस उदाहरण से हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा व्यक्त नियम को सीखना चाहिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। गुरु की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद मिलता है। बिना गुरु के प्रसाद के मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। शिष्य को भी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में गुरु को आचार्य कहा गया है, आचार्यम माम विजानीयान। श्री भगवान का कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु को ही साक्षात भगवान मानकर उसका आदर करे। नाव मन्यते कर्हचित। कभी भी आचार्य का अनादर न करें। न मर्त्य बुद्ध्या सूयते। आचार्य को कभी सामान्य जन नहीं समझना चाहिए। अधिक परिचय से अनादर होता है, किंतु आचार्य के साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहना चाहिए। अगाध धिष्णाम द्विजम। आचार्य पूर्ण ब्राह्मण होता है और वह अपने शिष्य के कर्मों के निर्देशन की अपार बुद्धि रखता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गुरु के निकट जाकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत होकर प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। वे सत्य को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तुम्हें ज्ञान प्रदान करेंगे। मनुष्य को गुरु की शरण में जाना चाहिए और सेवा द्वारा सेवया अधिक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत के छठे स्कंध के सातवें अध्याय में प्रसंग ये चल रहा है कि महाराज इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया है, जिसकी वजह से बृहस्पति अप्रसन्न होकर उनके दरबार से चले गए। बाद में महाराज इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने जो किया अच्छा नहीं किया, इसलिए मैंने बड़ा अपराध किया है और मुझे जाकर मेरे गुरु के चरणों में क्षमा याचना करनी चाहिए, उनके चरण छूने चाहिए। तो यहां इंद्र कह रहे हैं, अथा अहम, अब मैं, अहम मतलब मैं, अमर आचार्य, अमर, अमर मतलब जो मरता नहीं है, अमर। कभी कभी देवताओं को अमर शब्द से संबोधित किया जाता है, हालांकि देवता भी वास्तव में अमर नहीं है, लेकिन मनुष्य के जीवन की अवधि की तुलना से उनकी जीवन की अवधि इतनी अधिक है कि प्राय हमारे दृष्टि से वो अमर हैं, क्योंकि वो लाखों लाखों साल जीते हैं, जहां तक हमारी तो जीवन की अवधि केवल 50, 60, 70, 80 साल की होती है, इसलिए उनको अमर कहते हैं। और एक कारण यह है कि वो अमृत का पान करते हैं। अमृत, देवलोक में सोमरस, अमृत इत्यादि का पान करते हैं, जिसकी वजह से उनको लंबी उम्र जीने का मौका मिलता है, कोई बीमारी नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, केवल जन्म और मृत्यु। इतना होते हुए ऐसा नहीं है कि उनको कोई चिंताएं नहीं है, दुख नहीं है, उनका भी जीवन तनाव से भरा हुआ रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तन अर्जुन माम उपेतित कौंते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक से लेकर नीचे पाताल लोक तक सभी जन्म मृत्यु के वश में हैं, और चाहे कोई ब्रह्म लोक में भी क्यों न हो, वो भी चिंता और दुख से मुक्त नहीं हो सकता है। केवल कृष्ण भक्त ही दुख से मुक्त हो सकता है, चिंता से मुक्त हो सकता है। तो अमर आचार्य, तो अमरों के, देवताओं के वो आचार्य हैं, गुरु हैं। आचार्य मतलब जो अपने आचरण से सिखलाते हैं, वो हैं आचार्य। तो आचार्य केवल एक पदवी या एक नाम नहीं है, आचार्य वो होता है जो अपने आचरण से सबको सिखलाता है कि वास्तव में आध्यात्मिक जीवन क्या है, सच्चा प्रामाणिक आचार क्या है। तो अमर आचार्य, देवताओं के आचार्य हैं बृहस्पति। और यहां इंद्रदेव वर्णन करते हैं कि बृहस्पति कैसे हैं, अगाध धिषणम। अगाध मतलब बहुत लंबा चौड़ा, बहुत गहरा। धिषणम मतलब बुद्धि, धी, ये धी शब्द होता है बुद्धि के लिए, बुद्धि। और प्रसाद यिष्ये निषठः, प्रसाद यिष्ये प्रसन्न करना। अब मेरा कर्तव्य है कि मुझे उनको जाके प्रसन्न करना चाहिए। किस भावना से जाके प्रसन्न करना चाहिए? केवल बाहरी रूप से प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, बाहर से मीठे शब्द बोलकर अंदर से वही द्वेष की भावना रखना? नहीं। इसलिए वो कहते हैं निष्ठः, षठ मतलब कपट, षठी मतलब कपटी व्यक्ति। भारत में कई ऐसे कहावत हैं, षठम प्रतिशाठ्यम, शायद चाणक्य पंडित ने ऐसे कहा होगा कि षठ व्यक्ति को जब मिलते हो उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार आपको करना चाहिए, नहीं तो आपको धोखा मिल जाएगा। बाहर के संसार में अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है या कोई व्यक्ति बाहर जाता है व्यापार न भी करता हो, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो धोखा देने के लिए आते हैं, चोरी करने के लिए आते हैं। तो दुनियादारी में कभी कभी बहुत बुद्धिमान रहना पड़ता है, हालांकि हृदय से बहुत शुद्ध होना चाहिए। तो यहां पर इंद्रदेव कह रहे हैं निष्ठः, कि बिना कोई कपट की भावना के, निष्कपट भावना से जाके मैं बृहस्पति ऋषि को प्रसन्न करूंगा। शीर्षना तच्चरणम स्पृशन। शीर्षना मतलब अपने सर से, शिरा, तो अपने सिर को उनके चरणों में स्पर्श करूंगा। तत् चरणम, तत् मतलब उनका, चरणम स्पृशन, स्पर्श करूंगा। तो जब कोई महान व्यक्ति के प्रति अपमान होता है तो इसी प्रकार से प्रायश्चित का कार्य होता है। जब तक कि हम जाकर उस व्यक्ति से क्षमा याचना नहीं मांगेंगे और अपने आप को उस व्यक्ति के सामने नम्र नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी जो गलती है, हमारा जो दोष है, वो खत्म नहीं होगा। दोष मुक्त होना है तो इंद्रदेव के पद चिन्हों में चलना है। हाँ, लेकिन इंद्र ने जो दोष किया उस समय की पद चिन्ह नहीं, उनके उनके पीछे नहीं जाना है। इंद्रदेव बार बार ऐसे गलती करते रहते हैं। इंद्रदेव की गलती ये है कि वो बार बार यही गलती करते रहते हैं। हालांकि इंद्रदेव भी भक्त हैं। और कोई आप घटना मन में ला सकते हैं कि जब इंद्रदेव ने इसी तरह से अपमान किया हो कोई महान व्यक्ति का? हाँ, पृथु महाराज के यज्ञ में घोड़े को चोरी किया। कितनी बार किया? कई बार किया। ऐसा नहीं कि पहली बार किया और जब पकड़े गए, उनको जाना पड़ा, भाग के जाना पड़ा। पृथु महाराज का पुत्र, उनका नाम क्या था? विजिताश्व। अश्व मतलब घोड़ा, क्योंकि जो पृथु महाराज ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए घोड़ा रखा था, अश्व, अश्वमेध यज्ञ, तो घोड़े को बलि चढ़ाई जाती थी, इसीलिए उसका नाम हुआ अश्वमेध यज्ञ। तो इंद्रदेव घोड़ा ही चुरा कर लेके गए। वेश बदल के आए थे, एक सन्यासी का वेश पहनकर आए थे। तो क्योंकि पृथु महाराज के पुत्र ने इस घोड़े को जीत के फिर से लाए, इसलिए उसका नाम विजित अश्व, जो घोड़े को जीत कर लाए। और फिर से यज्ञ आरंभ हुआ, फिर से इंद्र एक दूसरे तरह के सन्यास वेश में आए, फिर से वो घोड़ा चोरी कर लिए, ओझल होकर आए, फिर से विजिताश्व उनके पीछे गए। इस प्रकार से कई बार हुआ। और जब पृथु महाराज अब उनकी हत्या ही करने के लिए तैयार हो रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना। इंद्रदेव भी शर्मिंदा हो गए कि मेरे हृदय में इतनी द्वेष भावना थी आपके प्रति। इंद्रदेव आए पृथु महाराज के चरण छूने के लिए सामने आए, लेकिन पृथु महाराज शर्मिंदा हो गए, कहे, नहीं नहीं, मैं तो एक पृथ्वीलोक का निवासी हूं, साधारण व्यक्ति हूं, और आप तो देवराज इंद्र हैं, ये ठीक नहीं है। तो जो प्रामाणिक वैष्णव होते हैं, जब उनके सामने कोई क्षमा याचना करने आता है तो वैसे ही उदार हृदय लेके रखता है। और जो प्रामाणिक वैष्णव है, उसके हाथों से कभी कोई गलती होती है तो उसी निष्ठा, निष्कपट भावना से अन्यों से उसको क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि हालांकि इंद्रदेव अभी हृदय से प्रामाणिक है, वो वास्तव में निष्ठ होकर, निष्कपट होकर अपने गुरु बृहस्पति के पास जाकर क्षमा याचना करना चाहते हैं, और जब पृथु महाराज के सामने आए उस समय भी निष्कपट भावना से आए थे, लेकिन फिर भी बार बार ऐसे करते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि वहां ऐश्वर्य इतना ज्यादा है, भोग की सुविधाएं इतनी ज्यादा है, इंद्रदेव के हृदय में पद के प्रति आसक्ति थी कि मुझे देवराज बनना है। तो जब किसी भौतिक चीज के प्रति आसक्ति हो जाती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आसक्ति का परिणाम है बुद्धि का भ्रष्ट होना। हम किसी गलती को बारंबार कर बैठते हैं किसी भौतिक आसक्ति की वजह से। आसक्ति हमारे बुद्धि को ढक लेती है। जैसे दुर्योधन के प्रति आसक्त थे धृतराष्ट्र, जानते थे वो कि दुर्योधन सही काम नहीं कर रहा है, बहुत ईर्ष्यालु द्वेषी है मेरा लड़का। और कितने उनके शुभ चिंतकों ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया कि देखो, ये आसक्ति काट दो, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे वंश को बचाना चाहते हो, सारे राज्य को बचाना चाहते हो, तो उस एक पुत्र को त्याग दो, नहीं तो इस एक पुत्र के प्रति जो तुम्हारे मन में आसक्ति है उसकी वजह से सारा वंश, सारे पृथ्वी का नाश हो जाएगा, लाखों लोगों की हत्या हो जाएगी। विशेष करके विदुर ऐसे उपदेश दिया करते थे। लेकिन धृतराष्ट्र अपनी आसक्ति की वजह से सुन नहीं पाए और जो विदुर ने कहा, जो गांधारी ने कहा, जो धृतराष्ट्र, वो सही निकला। गांधारी ने भी उपदेश दिए, गांधारी ने भी दुर्योधन को भी बहुत टोका कि क्या तुम अपने वंश का नाश करने के लिए के ऊपर तुले हो क्या, लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना, धृतराष्ट्र ने भी नहीं माना। तो ऐसे बताया जाता है कि दुर्योधन से ज्यादा गलती वास्तव में धृतराष्ट्र की थी, क्योंकि धृतराष्ट्र की गलती की आसक्ति इतनी दुर्योधन से थी। राजा की गद्दी में बैठने वाले धृतराष्ट्र थे। राजा को चाहिए कि वो इस प्रकार के आसक्ति में न पड़े। वैदिक इतिहास में ऐसे कितने सारे राजाओं का उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र को भी बहिष्कृत कर दिया हो, क्योंकि वो प्रामाणिक नहीं थे, राजा बनने के लिए योग्य नहीं थे, बल्कि राजकुमार बनने के लिए भी योग्य नहीं थे। ऐसे कोई नाम, राजा ने उनके पुत्रों को बहिष्कृत किया, ऐसा कोई उदाहरण? राजा थे लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र ठीक नहीं है, असमंजस, उनके पिता का नाम महाराज सगर, उन्होंने अपने इस एक पुत्र को त्याग दिया। और एक महाराज वेण को त्यागा किसने? महाराज अंग ने। महाराज अंग ने देखा कि मेरा पुत्र बड़ा दुष्ट है, सारे मेरे प्रजा को कष्ट देता है, उन्होंने त्याग दिया, उसको निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया। तो ऐसे प्रामाणिक राजा थे। राजा को सर्वप्रथम प्रजा का कल्याण देखना चाहिए, राज्य का कल्याण देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा पुत्र है ना, तो इसके लिए मुझे विशेष कुछ ध्यान देना चाहिए, गलत काम भी करे तो कोई बात नहीं। लेकिन आजकल तो ऐसा होता है ना, कोई किसी पद को प्राप्त कर लेता है सबसे पहले अपने परिवार कुटुंब के लिए सब कुछ कर देता व्यवस्था, फिर बाद में प्रजा को देखा जाए। एक बार हम पहले भी आपको बता चुके थे, हम कई साल पहले एक मंत्री के बारे में अखबार में पढ़ रहे थे जिनको कि भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार किया गया था और कोई उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था अदालत का। और जब पत्रकार ने उनको पूछा कि ये आपके प्रति आरोप है कि आपके पुत्रों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति आपने कोई गलत काम किया है, उनको नौकरी देने के लिए, धन देने के लिए वगैरह आपने ऐसे कार्य किए हैं, तो सही है क्या? तो उन्होंने उत्तर दिया, अरे मैं मेरे रिश्तेदारों के लिए नहीं करूंगा तो क्या तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए करूंगा। तो ये ऐसे है हमारे राजा आजकल, है ना? तो कम से कम साफ तो बोल देते हैं कि हम क्यों करना चाहते हैं। तो प्रामाणिक काल में वैदिक राजा ऐसे नहीं थे। तो ऐसे वैदिक पद्धति के अनुसार भी धृतराष्ट्र ने ठीक नहीं किया, इसलिए उनकी गलती हो गई। तो देखिए आसक्ति की वजह से कितनी गलती आदमी कर बैठता है और उस गलती का परिणाम क्या होता है, न केवल उनके ऊपर लेकिन कई लोगों के ऊपर। तो इंद्रदेव ने न केवल ऐसे महान व्यक्तियों की का अपमान किया, भगवान कृष्ण का भी अपमान किया, कई बार अपमान किया। कोई घटनाएं बता सकते हैं? गोवर्धन पर्वत धारण करते समय उन्होंने कहा कि ये तो छोटा बालक है, मूर्ख बच्चा है, और इसकी वजह से जो ब्रजवासी मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे वो अब रोका गया है। तो इसको सबक सिखाना चाहिए और सारे ब्रजवासियों को सबक सिखाना चाहिए। फिर अपने संवर्तक बादलों को बुलाकर भीषण वर्षा बरसाई वृंदावन के ऊपर, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके सबकी रक्षा की। और एक बार पारिजात वृक्ष जब ले जाना चाहते थे श्री कृष्ण, तो उस समय इंद्र ने उनको रोका। हालांकि इसके पहले ही इंद्र देव को बचा लिया था श्री कृष्ण ने। किससे बचाया था? भौमासुर, जो कि बहुत तंग कर रहा था, हैरान कर रहा था सारे देवताओं को, फिर भी श्री कृष्ण ने उनका वध किया था और बचाया था। और सत्यभामा देवी को देख लेकर गरुड़ के ऊपर सवार होकर, ठीक ऐसे गरुड़ के ऊपर सवार होकर गए थे और सीधे अमरावती, अमरा, फिर से वही नाम अमर अमरावती, तो अमरों का जो गांव है, राजधानी अमरावती स्वर्गलोक में जहां इंद्र देव रहते हैं, वहां पर चले गए। लेकिन इंद्र ने उनको पारिजात वृक्ष नहीं देना चाहा, फिर युद्ध हो गया और श्री कृष्ण ने इंद्र को हराया और पारिजात वृक्ष जबरदस्ती ले गए। तो ये है फल आसक्ति का। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, हमारी बुद्धि को हमेशा बहुत स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे कि हमारे भौतिक आसक्ति की वजह से हम ऐसे कोई कार्य नहीं करें जिसकी वजह से हमारा और अन्यों का नुकसान हो जाए। भौतिक आसक्ति से नुकसान ही नुकसान होता है, कभी भी कोई अच्छा नहीं काम होता। और निरासक्त होकर जब हम कोई कार्य करते हैं तो उससे बहुत भला हो सकता है, हमारा भी और अन्यों का भी। दूसरी बात, यहां इंद्र के मन में थोड़ा घमंड आया था इस ऐश्वर्य के कारण। जब किसी व्यक्ति के पास ऐश्वर्य आ जाता है, कोई यश, कोई सफलता आ जाती है, कोई भी ऐसे भौतिक चीज आ जाती है, तो उसके मन में घमंड आ जाता है। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं कि ये पागलपन है, एक नशा है। संस्कृत भाषा में घमंड को मद कहते हैं। मद मतलब जो नशे में है, जो पागल है। तो घमंड या अहंकार को एक प्रकार का पागलपन माना गया है। वास्तव में पागल कौन होता है? जो कि सत्य में स्थित नहीं होता, जो सपने की दुनिया में जीता है, अपने आप को कुछ और ही समझ बैठता है, मैं एक राजा हूं, मैं ये हूं वो हूं। तो जो घमंडी व्यक्ति होता है वो भी अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पूरी तरह से भूल जाता है। और घमंड एक ऐसी चीज है, कोई ज्यादा हमें यश या ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी कुछ मिल गया उतना काफी हमारे अंदर घमंड आने के लिए। अंग्रेजी में कहावत है, इवन अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, मतलब भिखारी भी अपने 10 कौड़ी पैसे से घमंड हो जाता है उसको। 10 पैसा है उसके पास, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो 10 पैसा आ जाता है, वो सोचता है कि मेरे पास 10 पैसा है, इसके पास केवल 1 पैसा है। तो देखिए, पश्चिम देशों में भी लोगों ने इस बात को समझ लिया है, केवल शास्त्रों की बात नहीं है। हर एक व्यक्ति जो दुनिया को देखता है वो समझ लेता है कि कितने आसानी से लोगों के अंदर घमंड आ जाता है, बहुत आसानी से। और जब ये आ जाता है तो व्यक्ति पागल के समान हो जाता है। इसलिए कुंती महारानी कहती है ना, इस श्लोक को आप सब जानते हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत शीभिर एदमान मद पुमान नैवार्हति अभिधा तुम भई त्वान अकिंचन गोचर। कि जिनके पास ये 4 चीजें हैं, जन्म, ऊंचा जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति मतलब बहुत बड़े विद्वान हैं, शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने, और श्री भी मतलब सौंदर्य, एधमान मदह पुमान, ऐसा पुमान, ऐसा व्यक्ति मदह पागल हो जाता है, नशे में आ जाता है। नैवार्हति अभिधा तुम वही त्वाम अकिंचन गोचर। इसलिए गोचर आपके अग्रसर, आपके प्रति अग्रसर नहीं हो सकता, आपके करीब नहीं आ सकता, वो हृदय से आपका नाम नहीं पुकार सकता है। जब व्यक्ति के पास बहुत कुछ धन संपत्ति यश इत्यादि होता है तो हृदय से भगवान का नाम नहीं पुकार सकता। जब सब कुछ हमारे जीवन में ठीक ठाक चल रहा है तो हम भगवान को पुकार नहीं सकते हैं। जब हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है या जब हम बड़े कठिनाई की अवस्था में होते हैं, शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक, सामाजिक, कोई भी कठिनाई हो, उस समय भगवान को पुकारा जा सकता है। इसलिए जो भक्ति मार्ग में है वो जानते हैं कि ऐसे कष्टों को बार बार आने से हमारे भक्ति मार्ग में हम प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर निर्भर रहने के लिए हमें एक मौका मिल जाता है, तीव्रता से उनके नाम को पुकारने के लिए एक प्रेरणा मिल जाती है। नहीं तो ये दुनिया की माया शक्ति ऐसी है कि थोड़ा कुछ सफलता प्राप्त करने से हमारी दृष्टि पूरी तरह से आवृत हो जाती है, ढक जाती है। तो इंद्रदेव के उदाहरण से हम सीख सकते हैं, अगर हम अन्यों के प्रति अपराध करें तो जैसा जैसे उस व्यक्ति की योग्यता है, उसका स्तर है, उस स्तर के हिसाब से, उस व्यक्ति की योग्यता के हिसाब से हमें उसका रिएक्शन, उसका प्रतिकार मिलेगा। अगर व्यक्ति कम योग्य है तो किसी के व्यक्ति प्रति भी अपराध करने से उसका प्रतिकार अवश्य हमें मिलेगा, लेकिन जितना ज्यादा योग्य है व्यक्ति उतना ज्यादा प्रतिकार हमको मिलेगा। अगर कोई भक्त है तो और भी ज्यादा मिलेगा। अभक्त को भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए बिना वजह से। बाहर की दुनिया में भी जब घूमते फिरते हैं बिना वजह के किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। तो फिर भक्तों की बात तो दूर क्या है, किसी नए भक्त का भी अपमान नहीं करना चाहिए। सोचते हो कि हम अभी बहुत पुराने भक्त हैं, नहीं, नए नए भक्तों का भी नहीं करना चाहिए। और जितने ज्यादा बढ़े हुए भक्त हैं भक्ति में, जितना हम उन भक्तों का अपमान करेंगे उतना ज्यादा ही फल हमको मिलेगा। अभिराम ठाकुर ये एक नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे चैतन्य लीला में। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने शक्तिशाली थे, पावरफुल भक्त थे, कि जब वो किसी एक शालिग्राम शिला को दंडवत करते थे, अगर वो प्रामाणिक शालिग्राम शिला नहीं होती, कोई ऐसी झूठा पत्थर किसी ने आके रखा होता, कहा कि ये शालिग्राम शिला है, गोवर्धन शिला है, तो पत्थर टूट जाता केवल उनके दंडवत के माध्यम से, क्योंकि उस पत्थर में शक्ति नहीं रहती अभिराम ठाकुर के दंडवत को स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। इसलिए दूसरों को दंडवत ग्रहण करते समय भी हमें थोड़ी शक्ति होनी चाहिए। तो और ऐसे कहा, सब लोग घबराते थे अभिराम ठाकुर से, कहीं हमें दंडवत न करें, हमें दंडवत करे तो कठिनाई हो जाएगी। तो एक बार एक भक्त था, बच्चा था, इसका नाम था गोपाल गुरु। तो गोपाल गुरु उसका नाम था वास्तव में कुछ और, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको नाम रखा गोपाल, और गुरु बाद में पदवी दी गई, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने पदवी दी उनको। क्योंकि एक बार हुआ ये कि एक ऐसे भक्त जो थे जगन्नाथपुरी में, वो निरंतर कृष्ण का नामोच्चारण किया करते थे 24 घंटे, और इतनी आदत बन गई थी उनको कि रोक नहीं सकते थे कृष्ण नाम लेने से। एक बार जब वो शौचालय में जा रहे थे तो अपने जीभ को उंगली में पकड़ के रखे थे, क्योंकि नाम से कृष्ण 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 हो रहा था। तो जब बालक गोपाल ने देखा तो पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो समझ गए कि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो शौचालय में जाते समय वो कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो भक्त सोच रहे थे कि शौचालय गंदी जगह है, तो गंदे कार्य करते समय भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसलिए मुझे जिह्वा को पकड़ लेना चाहिए, कि मेरा जिह्वा जो है वो निस्सहाय भाव से वो कृष्ण का नाम लेते रहता है। तो ये बालक जो है वो बोल पड़ा कि अरे क्या आप नहीं जानते हैं कि भगवान के नाम के उच्चारण करने के लिए कोई देश काल का कोई विधि नहीं है, कहीं भी भगवान का नाम ले सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अशुद्ध जगह में होकर हम भगवान का नाम नहीं ले सकते तो फिर मृत्यु के समय क्या होगा, फिर मृत्यु के समय आप भगवान का नाम कैसे लेंगे, आपकी अच्छी गति कैसी होगी? तो भगवान का नाम किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है। तो जब ऐसा अच्छा उपदेश इस बालक ने दिया तो चैतन्य महाप्रभु ने सुना इसको और कहा कि तुम्हारा नाम आज से गुरु हो जाएगा, गोपाल नहीं, गोपाल गुरु। तो गोपाल गुरु की प्रसिद्धि सब जगह फैल गई कि ऐसा छोटा बच्चा है, इसने अच्छा उपदेश दिया इस उम्र में। तो अभिराम ठाकुर ने बात सुनी, अच्छा ऐसा कहते हैं कि ये बच्चा बहुत महान वैष्णव में जाके परीक्षा करते हैं इसकी। तो खबर पहुंच गई जगन्नाथपुरी में कि अभिराम ठाकुर गोपाल गुरु को दंडवत करने के लिए आ रहे हैं, और कई भक्त जो है बहुत प्रेम करते थे बालक गोपाल से, गोपाल गुरु से। सब चिंतित होकर आ गए महाप्रभु के पास, अब क्या होगा, अब अभिराम ठाकुर दंडवत करने को आ रहे हैं गोपाल गुरु के पास। तो गोपाल गुरु ने भी सुन ली, और जब अभिराम आए तो भाग के चैतन्य महाप्रभु की गोदी में बैठ गए सुरक्षा के लिए, कि अब हमें कुछ नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहा, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं करो। फिर अभिराम ठाकुर आए, दंडवत किया उन्होंने, लेकिन सम्मान से किया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का संरक्षण था। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा हम किसी वैष्णव का सम्मान करेंगे, अगर जितना ज्यादा बढ़ा हुआ वो वैष्णव हो उतना ज्यादा लाभ हमें मिलेगा, एक साधारण वैष्णव का सम्मान करने से लाभ तो मिलेगा, लेकिन एक शुद्ध वैष्णव की तरह वैष्णवों के प्रति अपमान करने से भी ऐसे ही होता है। चैतन्य चरितामृत में एक कथा का वर्णन आता है कि हरिदास ठाकुर जो कि शुद्ध भक्त थे, सदैव श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते थे, वो चलते चलते जब एक जगह आए तो बहुत प्रसिद्ध हो गए। वहां पर उनको बहुत मान सम्मान मिलने लगा, क्योंकि सब लोग पहचान गए कि ये एक शुद्ध भक्त हैं। और जगह जगह से, गांव गांव से लोग आते थे, दंडवत करते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, उनके पास आके बैठते थे। तो वहां पे एक जमींदार थे जिनका नाम था रामचंद्र खान। उनको अच्छा नहीं लगा कि इस साधु को इतना सम्मान मिल रहा है, मैं भी यहाँ इस नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, बड़ा ईमान अमीर व्यक्ति हूँ, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो रामचंद्र खान ने एक वेश्या को बुलाया, उसको बहुत पैसे दिए और कहा कि इसको जाके बदनाम करो और इसका पतन कराओ। तो वेश्या वहां पर गई, लेकिन आप वो कथा तो जानते हैं कि हरिदास ठाकुर ने रात भर उसको बिठाया कि मेरे माला समाप्त नहीं हुए, माला समाप्त होने के बाद में मैं आऊंगा तुम्हारे पास। लेकिन रात बीत गई, माला खत्म नहीं हुए, हरिदास ठाकुर ने कहा आपने कल। तो ऐसे 3 दिन लगातार हुआ, और फिर तब तक हरिदास ठाकुर के शुद्ध जप को सुनते सुनते वो वेश्या भी कृष्ण भक्त हो गई। और हरिदास ठाकुर ने कहा कि जब पहली बार ही तुम आए थे वहां पर मेरे पास, तो मैं जानता था कि रामचंद्र खान ने तुमको भेजा है, लेकिन मैं तुम्हारा उद्धार करना चाहता था, इसलिए मैं रुका, नहीं तो मैं कब का चला गया होता। तो वेश्या जो है शुद्ध भक्त बन गई, हरिदास ठाकुर के कुटिया में रह गई और वहां तुलसी देवी की सेवा करते करते निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए रह गई। और हरिदास ठाकुर वहां से चले गए और उस रामचंद्र खान को बिल्कुल भूल गए। हरिदास ठाकुर तो भूल गए रामचंद्र खान को, लेकिन भगवान कृष्ण भूले नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण अपना अपमान भला सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं करते। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि ये जो अपराध रामचंद्र खान ने हरिदास ठाकुर के चरणों के प्रति किया, वो एक बीज के समान था जो आगे चल के एक बहुत बड़ा वृक्ष बनने वाला था। फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, आइए इस वृक्ष की कथा के बारे में मैं कुछ सुनाऊं आपको। तो फिर वो कहते हैं कि एक बार नित्यानंद प्रभु, जो कि स्वयं श्री बलराम हैं और जो कि आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत हैं, वो प्रचार करते करते, भ्रमण करते करते यहां पर उसी गांव में आए और रामचंद्र खां के आंगन में, जहां दुर्गा मंडप है, पुराने जमाने में बंगाल में ऐसे दुर्गा मंडप उनके घरों के आंगन में हुआ करता था, जहां छोटे से दुर्गा का मंदिर हुआ करता था और वहां सारे धार्मिक कार्यक्रम हुआ करते थे। तो रामचंद्र खां के घर के दुर्गा मंडप में आके वहां पर बैठे और उनके पीछे पीछे उनका दर्शन करने के लिए कई लोग आए, बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र हुए। इसको देखकर रामचंद्र खान को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपने एक नौकर को भेजा कि जाओ इस अवधूत से कहो कि किसी साधारण व्यक्ति के घर में उनकी रहने की व्यवस्था करेंगे, यहां पर वो नहीं रहे। तो वो नौकर ने आके कहा उनसे कि आप यहां नहीं रह सकते, एक दूध वाले के घर में, ग्वाले के घर में आपकी हम रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो यहां से आप आइए। तो नित्यानंद प्रभु को बड़ा गुस्सा आया, बहुत जोर से हंसे और जोर से हंसकर कहने लगे कि इसी स्थान में एक गाय के मांस खाने वाले व्यक्ति आके रहेगा, पूरी तरह से दूषित हो जाएगा ये जगह। ये रामचंद्र खान सोचता है कि मैं यहां आकर इस स्थान को दूषित कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में इस स्थान का प्रदूषण तब होगा जब एक गाय का मांस खाने वाला व्यक्ति इधर आ जाएगा। और ऐसे जोर से अट्टहास करते हुए नित्यानंद प्रभु वहां से निकल गए। तो हुआ ये कि ये रामचंद्र खान व्यापारी थे, जमींदार भी थे, उन्होंने अपने व्यवसाय में कुछ गोलमाल किया था और कर के मामले में गोलमाल किया था, उस जमाने में भी यह चलता था। उन्होंने राजा को कर अपना ठीक से नहीं दिया था, तो राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, सेना को भेजा कि जाके देखो इससे कर वसूल करो, और अगर नहीं दे रहा हो तो उसको दंड दो। तो जो मुसलमान राजा था वहां, उसने अपने मंत्री को भेजा जो भी मुसलमान था, और वो वहां आकर दुर्गा मंडप में रहा, और उसने उस रामचंद्र खां के घर को पूरा डाका मार दिया, सब कुछ छीन लिया, रामचंद्र खां को जेल में डाल दिया, उसके घर में जितना भी कुछ था वो सब लूट लिया, लगातार उस सारे गांव में तहस नहस कर दिया, लूट मार उस सारे गांव में करा दिया, और उस दुर्गा मंडप पे 3 दिन रहकर वहीं पर गाय की हत्या करके गाय का मांस खाया। और इतना परिणाम यह हुआ, जबकि रामचंद्र खान ने नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद वहां से गोबर से उस जगह को धोया, ये सोचकर कि अब ये जगह पवित्र करूंगा, क्योंकि इस अवधूत ने आकर यहां सब कुछ अशुद्ध कर दिया है। लेकिन वास्तव में नित्यानंद प्रभु के वहां आने से उनका आंगन, उनका सारा घर, जीवन शुद्ध हो गया था। इस बात को रामचंद्र खान अपने घमंड और अपने ऐश्वर्य की वजह से समझ नहीं पाए। लेकिन अब कैसी दशा हो गई तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक महान वैष्णव के अपमान से, देखिए अगर सारे जिस देश और गांव में उस व्यक्ति का अपमान होता था वो सारे गांव में उत्पात हो जाता है। तो अगर वैष्णव का अपमान कहीं जगह होता है तो जो अपमान करने वाले व्यक्ति हैं उनका नुकसान तो होता ही है, लेकिन जिस स्थान में, जिस घर में, जिस गांव में, शहर में, देश में वो लोग रहते हैं वहां भी उत्पात हो जाता है, वहां भी बहुत नुकसान हो जाता है। जगाई और मधाई, उन्होंने दुनिया भर के पाप किए थे, ऐसा कोई पाप नहीं था जो कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनका सौभाग्य था कि उन्होंने एक बुरा काम जीवन में नहीं किया था, और वो क्या था? वैष्णव अपराध, वैष्णव का अपमान नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? वैष्णव मिले ही नहीं थे आज तक, तो कोई अपराध करने का सवाल नहीं आता। तो इसलिए उनको नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर का संग मिलने के लिए वो योग्य हो गए, और फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपमान किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्षमा की उनको। और वैष्णव के जो स्वयं है भगवान, लेकिन वैष्णव के रूप में थे, तो वैष्णव की क्षमा जो है वो भी उतनी ही शक्तिशाली है। अगर वैष्णव के प्रति हम कोई गलती करते भी हैं तो इस वैष्णव अगर हमें क्षमा कर लिया तो सब ठीक हो जाता है। इसलिए वैष्णव पद्धति होती है कि अगर हम किसी वैष्णव के प्रति, किसी भक्त के प्रति कोई गलती करते हैं तो दो चीजें आवश्यक हैं। एक है कि हमारे हृदय में बहुत तीव्र पश्चाताप की भावना होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है चल जाएगा काम, नहीं, बहुत पश्चाताप हृदय से, और जो करने के लिए आवश्यक है उस अपराध से मुक्त होने के लिए वो हमें करने के लिए तैयार होना चाहिए। और दूसरी बात, उसी वैष्णव के सामने जाके क्षमा याचना हृदय से करनी चाहिए, जैसे इंद्र ने यहां किया, निष्ठः प्रसाद ईष्ये, उनको प्रसन्न करके निष्ठ निष्कपट भावना से जाके उनके सामने क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसे करने से फिर हम अपराध मुक्त हो सकते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे प्रयाग में, तो उन्होंने बताया कि भक्ति, इसका बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से हृदय में बोया जाता है, हृदय के क्षेत्र में बोया जाता है, और फिर जैसे कि किसी साधारण खेती में, खेत में जब बीज बोया जाता है तो उसकी सिंचाई करना आवश्यक है, जल देना आवश्यक है, जिससे कि वो पौधा बन जाए, जिससे कि फसल उगे। तो उसी प्रकार से भक्ति लता बीज जो भक्त के हृदय में होता है उसकी सिंचाई होती है श्रवण कीर्तन के जल से। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम का श्रवण कीर्तन करने से भक्ति लता बीज का पोषण हो जाता है, जिसकी वजह से वो पौधा बन जाता है, उसका विकास, उसकी वृद्धि होते होते वो बढ़ जाता है। जितना ज्यादा भक्त श्रवण कीर्तन करता है उतना ही हरा भरा वो लता हो जाता है, और फिर बढ़ते बढ़ते गोलोक वृंदावन पहुंच जाता है, श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करता है। और फिर वहां पे वो लता को एक बहुत परिपक्व मधुर मीठा फल मिल जाता है, जिसको कृष्ण प्रेम कहते हैं। और ये कृष्ण प्रेम का फल फिर वहां से नीचे गिर आता है, सीधे उस माली दिव्य माली के हाथ में आ जाता है। फिर वो दिव्य माली इस कृष्ण प्रेम के फल को चखता है, बहुत आनंद से भाव विभोर हो जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु चेतावनी देते हैं, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि न केवल हम जल देना बंद नहीं करें, परंतु ऐसे कई जंगली जानवर भी आते हैं उस पौधे को खाने के लिए, जो कि अलग अलग तरह के अपराध हैं, तो इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे कि ये भक्ति लता जो है वो नष्ट न हो जाए। साथ साथ में जब कोई हम बीज बोते हैं जमीन के अंदर, तो फसल या मूल पौधे के साथ साथ ऐसे कई उपशाखाएं होती हैं, जंगली घास होते हैं जो उगता है, उसी पानी से उसका पोषण होता है, जिस पानी से वो बीज का पोषण होता है। और फिर ये जंगली घास उगकर ये मूल घास, ये मूल जो पौधा है उसको उगने नहीं देता। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भक्ति लता बीज का पोषण करने के लिए जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन का जल उसके ऊपर सिंचन कर रहा है, उसके बाद भी हृदय के अंदर जो तरह तरह के अनर्थ हैं, उससे अगर बच के नहीं रहेगा भक्त, तो ये तरह तरह के उपशाखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे कि निषिद्धाचार, ऐसे आचरण करना या ऐसे चीजें करना जो कि वर्जित हैं, चार निषिद्ध कार्यों को अगर व्यक्ति करे तो उसे भक्ति लता बीज नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे संप्रदाय में, संस्था में चार नियमों के बारे में इतना जोर दिया जाता है, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, जुआ नहीं करना, क्योंकि ऐसे निषिद्ध कार्यों को करने से भक्ति लता नष्ट हो जाती है। साथ साथ महाप्रभु कहते हैं कपट, ये कपट जो होता है ये भी एक प्रकार का जंगली घास है जो कि भक्ति लता को नष्ट कर सकता है। तो भक्त भक्ति के जीवन में भी ये बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए भक्त को चाहिए कि कपटी भावना से हम हमेशा दूर रहें। यहां इस श्लोक में निष्ठ या निष्कपट एक ही बात है, जैसे इंद्रदेव निष्ठ होकर आए, उसी प्रकार हमारे भक्ति के जीवन में भी और वैष्णवों के बीच में रहते हुए वैष्णवों के संबंधों को निष्कपट भावना से हमें जारी रखना चाहिए, जिससे कि हमारी भक्ति लता जो है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ती रहेगी और इसका जो सच्चा फल है कृष्ण प्रेम वो हमको मिल जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
हरिदास ठाकुर को दास मार्केट में बिता रहा था, तो उस समय मतलब सुल्तान राजा के लिए ऐसा हो गया था, मतलब विकास को उन्होंने हरिदास मार्केट किया था, तो उसको सुल्तान वाले को भी कुछ ऐसा भगवान से भगवान
अवश्य कुछ तो फल मिला ही होगा, इसके बारे में ज्यादा वर्णन तो नहीं आता। वास्तव में ये जो सुल्तान था ना, उसको इतनी इच्छा नहीं थी हरिदास ठाकुर की पिटाई करने के लिए, क्योंकि वहां के जो काजी था वो काजी अच्छा व्यक्ति नहीं था। काजी हमेशा भड़का रहे थे राजा को, नहीं आपको करना ही चाहिए, हमारे ग्रंथ के हिसाब से आपको ऐसे करना चाहिए, हमारा धर्म का नाश हो जाएगा, आप ऐसा कीजिए। तो ये राजा जो थे वो समझ गए थे कि वास्तव में कुछ अच्छे संत हैं, हालांकि क्योंकि उनका भी धर्म ऐसा था तो उनको बोलना पड़ा ऐसे, पहले तो अपमानित करके कहा लेकिन बाद में वो समझ गए। लेकिन फिर भी जितना भी कोई भी अपमान होता है शुद्ध भक्त के प्रति, उसका फल तो हर एक व्यक्ति को मिलता ही है किसी न किसी तरह से।
आपने बताया जैसे कोई भक्त या कोई व्यक्ति और एक व्यक्ति भक्त के प्रति अपराध करता है तो उस भक्त को बल्कि उस समाज को सबको भुगतना पड़ता है। तो मतलब हम जब वैष्णव कम्युनिटी में रहते हैं जैसे हम आश्रम में रहते हैं या कोई भक्त अपराध करता है तो हमको भी उसको सबको कराता है। हालांकि हम भी मतलब साधन वगैरह करते हैं फिर भी हमको उसके बारे में
ये तो भौतिक क्षेत्र में भी होता है। जैसे कोई घोर पाप अगर कहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति को ही नहीं सारे समाज को उसका दोष मिलता है। सारे समाज का कार्य नाम बदनाम हो जाता है। ये समाज ऐसे है, ये देश ऐसे है, ये कुटुंब ऐसे है, होता है ना। केवल भौतिक क्षेत्र में भी ऐसे होता है तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी होता है। अभी हमारा मंदिर है, हमारी संस्था है, अगर हमारे कोई मंदिर के से संबंधित भक्त या संस्था के भक्त कोई ऐसे गलत काम करे तो इससे सबको फर्क पड़ता है, सबको इसका असर पड़ने वाला है। कोई भक्त बाहर जाएगा तो अरे आपके संस्था के भक्त ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, हमको सुनना पड़ता है ना, हमको भी फर्क पड़ता है ना। इसलिए सावधान रहना चाहिए। और ध्रुव महाराज ने कई सालों तक तपस्या नहीं की, केवल 6 महीने की है तपस्या। 6 महीने में उनको भगवान का दर्शन हो गया पूरी तरह से। लेकिन हाँ, उस समय सकाम भक्त थे ध्रुव महाराज जब आए, लेकिन जब भगवान का दर्शन हुआ, जब उनकी तपस्या समाप्त हो गई, 6 महीने हो गए, तब शुद्ध भक्त बन गए। भगवान की कृपा से उनका पूरा हृदय शुद्ध हो गया। न किसी अभक्त का अपमान किया, लेकिन आगे चल के वो भक्त बन गया, फिर उसका भी सर पड़ेगा। नहीं, भाव हमारा सही होना चाहिए, मूल बात यही है। भाव सही होना चाहिए।
हरे कृष्ण। जैसे कि अमरता के बारे में बोले, वैसे ही जैसे कि अश्वत्थामा से वो चिरंजीव का वचन प्राप्त हुआ है, वो उसका भी काल क्या है और अश्वत्थामा को क्यों चिरंजीव बनने का वचन दिया।
चिरंजीव मतलब जो लंबी आयु होते हैं, चिर चिर मतलब लंबा समय। तो ऐसे कई हैं जिनको आगे भगवान के योजना के अनुसार जिम्मेदारी लेनी है, जो आगे जाके कोई इंद्र बनेगा, आगे जाके कोई कुछ पद स्वीकार करेगा आने वाले सत्युग में, कलयुग के अंत में। तो ऐसे विशेष लोग होते हैं जो अपने पूर्व कर्म के अनुसार उनको ये पद मिलना है, इसलिए उनको इतनी लंबी आयु दी गई है। इसलिए ऐसे जो आने वाले युग में सूर्य वंश और चंद्र वंश को फिर से पुनः शुरू करने वाले दो व्याजाए हैं, अभी भी कलाप ग्राम नाम के गांव में कहीं तो हैं। अभी कौन सा है कलाप ग्राम नहीं मालूम, लेकिन भागवत में वर्णन आता है। आज किसी दूसरे गांव से जाना गया होगा, लेकिन कोई तो व्यक्ति है वहां पर जो बहुत कम से कम हजारों साल उनकी आयु है, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहे हैं उनको, या तो अन्य उनको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन आगे चल के उनको जिम्मेदारी है पुनः इस संस्कृति को जागृत करने के लिए। तो उसी प्रकार से ऐसे चिरंजीवों का स्थान है। निष्कपट भावना यह बहुत उच्च बात है, हृदय में यह सूक्ष्म रूप से रहता ही है। इस भावना को हृदय से कैसे निकाला जाए? नम्र होकर, वैष्णव के सामने दासानुदास रहकर। कल रविवार को इष्ट गोष्ठ में भी हम बतलाए रहे थे ना कि प्रभुपाद जी इसी संदर्भ में जब भक्तिलता बीज की बात होती है, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी रहते हैं, कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति भक्तों के समाज में दासानुदासपन के नहीं रहता, उसको श्रवण कीर्तन का फल भी नहीं मिलता है, श्रवण कीर्तन के लिए वो योग्य नहीं होता। और अगर श्रवण कीर्तन करे भी उसका फल उसको नहीं मिलेगा। तो इस भावना से अगर हम भक्तों के समाज में रहे तो फिर ये कपट की भावनाएं, जितने भी अनर्थ हमारे हृदय में है, कहीं लेश मात्र में हृदय के कोने में छुपे हुए हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। केवल इस पद्धति को ठीक से स्वीकार करना है, ग्रहण करना चाहिए। हमारी माला अच्छे ढंग से करनी चाहिए, हृदय से करना चाहिए, श्रवण कीर्तन ध्यान से करना चाहिए, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, वैष्णव के सामने हमेशा नम्र रहना चाहिए। ऐसा करने से ये सारे अनर्थ शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे और हम अनुभव कर पाएंगे वास्तव में कैसे ये स्तर शनि शनि ऐसे क्रमशः हो रहा है। हरे कृष्णा। क्षमा हो जाता है, बिल्कुल सही बात। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार से